समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
खुद पर विश्वास हो और कर्म में आस्था, तो कितनी भी मुश्किल डगर हो मिल जाता है रास्ता। वेल, इसी सोच के साथ हम भी पहुंच गए हैं आकाशवाणी स्टूडियो लेकर समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे। सभी श्रोताओं को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शनिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और मेरी सहयोगी शेफाली सिंह, हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. Dear listeners, mornings are like nature in spring, humming with the sounds of life and the promise of a fresh new day. So wishing you all a very good morning. And now we bring you our ever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 31st of August. So Ravi, let's begin with the headlines first.
Ji bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत ये ट्रेन तीन रेल मार्ग मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल पर चलाई जाएंगी। इससे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लोगों को रेल यात्रा की तेज और विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होगी। मेरठ और लखनऊ के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 डिब्बे होंगे और ये यात्रा का अनुमानित समय लगभग 7 घंटे 15 मिनट में होगा। वहीं हमारे चेन्नई संवाददाता ने खबर दी है कि चेन्नई एग्मोर से नागरकोइल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से त्रिची, मदुरई, जंजीकूल और तिरुनेवली सहित प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन केंद्रों के बीच संपर्क में वृद्धि होगी।
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a two-day national conference of district judiciary at Bharat Mandapam in New Delhi this morning. On the occasion, the Prime Minister will unveil a stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court. The two-day conference organized by the Supreme Court will feature 5 sessions on district judiciary issues, including infrastructure, inclusive courtrooms, judicial security, case management and training. The Chief Justice of India, Union Minister for Law and Justice and the Attorney General will also participate in the inaugural program.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले श्री सोरेन ने कहा था कि वे आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं।
इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका हैव साइन द चार्टर एंड एन एमओयू फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी सेक्रेटेरिएट इन कोलंबो टू एड्रेस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन। द साइनिंग सेरेमनी वॉज होस्टेड इन कोलंबो बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। National Security Advisor Ajit Doval and the representatives of the Maldives, Mauritius and Sri Lanka signed the documents yesterday on behalf of the respective member states. Speaking on the occasion, National Security Advisor Ajit Doval emphasized the importance of the Colombo Security Conclave in addressing traditional, non-traditional and emerging hybrid security challenges. He highlighted the need for sustained regional cooperation across various security pillars. The CSC's core objective is to promote regional security by addressing transnational threats and challenges of common concern to the member states. There are 5 pillars of cooperation under the CSC, namely maritime safety and security, countering terrorism and radicalization, combating trafficking and transnational organized crime, cyber security and protection of critical infrastructure and technology, and humanitarian assistance and disaster relief. During his Sri Lanka visit, Mr. Doval met President Ranil Wickremesinghe, Prime Minister Dinesh Gunawardena, and National Security Advisors of Sri Lanka and the Maldives. He also interacted with Sri Lanka's leader of the opposition and leader of Samagi Jana Balavegaya, Sajit Premadasa, member of parliament and leader of National People's Power, Anura Kumara Dissanayake, as well as political leaders and representatives from various political parties, including those from the north, east and upcountry regions. The India Meteorological Department, IMD, has issued a warning that Cyclone Asna, a deep depression over the Arabian Sea, causing heavy rains in Gujarat, is likely to move west-northwest over the northeast Arabian Sea and away from the Indian coast during the next 24 hours. The regions of Kutch in Gujarat received heavy rainfall during the last 24 hours. Meanwhile, the IMD has forecast very heavy rainfall at isolated places over Odisha, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Yanam and coastal Karnataka today. The weather agency has also predicted heavy rainfall over central India, Kerala, Mahi district of the Puducherry, coastal Karnataka and central Maharashtra during the next 7 days. The IMD has predicted light to moderate rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Andaman and Nicobar Islands, Odisha, Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand and East Rajasthan during the next 7 days.
भारत की आरती ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। आरती ने राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड समय के साथ ये पदक जीता। आरती 44:39.39 के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। आरती ने 47:21.04 का अपना पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। चीन की झुओमा बेमा ने स्वर्ण और मेईलिंग चीन ने रजत पदक जीता। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शेफाली सिंह।
जी रवि, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। Officials of the Directorate of Revenue Intelligence have seized nearly 1 crore misbranded cigarettes of an Indian brand worth 15 crore rupees, smuggled from Thailand and Dubai in ships. The cigarettes had been imported with a false declaration as consumables and were to be distributed as original cigarettes for retail sale across the country. The first consignment arrived at Chennai port from Thailand on 8th of August. Based on inputs, DRI sluts searched a particular container and found Indian brand cigarettes hidden in them. In total, 62.5 lakh cigarettes worth 10 crore rupees were seized. In another news, Greater Chennai Corporation has declared war on the stray dog menace. It has decided to set an animal birth control surgery target of 50,000 a year against the present 15,000. The Greater Chennai Corporation Council has approved 10 crore to establish 2 new animal birth control centres and recruit additional staff to meet the target. The corporation will hire 11 veterinarians, 94 attendants and labourers and 9 security guards. The dog census will conclude on Saturday, August 31, with final numbers to be tallied by 15th September. And now news from Bengaluru. Hindustan Aeronautics Limited, HAL, and Safhal Helicopter Engines Private Limited, SAF HAL, have partnered to jointly manufacture a high-power engine named Aravali, which will be designed and developed for 2 upcoming helicopters by HAL. The Aravali engine is set to power the 13-ton medium-lift class Indian multi-role helicopter, IMRH, and the deck-based multi-role helicopter, DBMRH. The engine will be engineered to operate effectively in diverse and challenging environments, ensuring reliability in the demanding conditions where these helicopters will be deployed. Safhal, a joint venture between Safran Helicopter Engines, SAS and HAL, focuses on the design, development, production, sales and support of next-generation helicopter engines in India. Under this contract, Safhal will collaborate closely with its parent companies, leveraging cutting-edge engine technologies, advanced manufacturing processes and rigorous testing protocols to bring the Aravali engine to fruition. And now, news from Hyderabad. In Telangana, the Cyberabad police have recovered 570 mobile phones worth 1 crore 50 lakh rupees, which were either stolen or lost in the last 25 days. The phones were handed over safely to their owners yesterday. Under the supervision of DCP Crimes, K. Narasimha, various wings in collaborative efforts recovered the phones using the Central Equipment Identity Register, CEIR, portal. The recovered phones were handed over to their owners at the Cyberabad Police Commissionerate. During the event, Narasimha stated that in the past 8 months, Cyberabad Police have recovered a total of 2,696 stolen mobile phones. Of these, 1,200 phones were recovered in the last 3 months, with 570 retrieved in just the past 25 days. The DCP emphasized that thieves were relentless, so the police must be equally persistent in their recovery efforts. He urged the citizens to report lost mobile phones either at their nearest police station or directly through the CEIR portal, which is accessible online across all states and union territories. He highlighted that using the CEIR portal helps prevent the misuse of stolen phones and facilitates their swift recovery. And now, dear listeners, for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to Ravi.
Dhanyavaad Shefali. दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के अंतर्गत लगभग 62.5 किलोमीटर हिस्से को मुक्त कराया है। निगम के अनुसार सिटी एसपी जोन ने इस महीने की पहली तारीख से क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया है। अभियान के अंतर्गत जोन की जनरल ब्रांच द्वारा मुख्य सदर बाजार, बड़ा टूटी चौक, तेलीवाड़ा, रुई मंडी, पुल कुतुब रोड, कुतुब रोड, पान मंडी, इंद्रलोक साप्ताहिक बाजार, शास्त्री नगर, किशनगंज, सुभद्रा कॉलोनी, दयाबस्ती और पुराना रोहतक रोड सहित कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान के दौरान 465 सामान जब्त किए गए और आवश्यक कार्रवाई भी की गई। दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन अप्रैल 2025 में शुरू होने की संभावना है। ये हवाई अड्डा वृहद दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत के विभिन्न राज्यों और विश्व के अलग अलग देशों से जोड़ेगा। दिल्ली सरकार का कला, संस्कृति और भाषा विभाग आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर में शाम 5 बजे से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगा। दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति और भाषा विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। जामिया मिलिया इस्लामिया के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र CDOE ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितंबर 2024 कर दी है। CDOE विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिसमें शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, इस्लामिक अध्ययन, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास पर कल नई दिल्ली में चर्चा का आयोजन किया। NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा कि आर्थिक प्रगति और कई सरकारी पहलों के बावजूद भीख मांगने की प्रथा का जारी रहना गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताओं का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि आयोग इन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। चर्चा में इस समस्या से निपटने के लिए कई सुझाव, जैसे भिखारियों की अधिकता वाले क्षेत्रों की मैपिंग, उन्हें आधार कार्ड जारी करना और भीख मांगने को अपराध मुक्त करना शामिल है। आगे बढ़ते हैं शेफाली, मुंबई की ओर चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो सभी सार्वजनिक गणेश मंडलों को निर्देश दे कि वे पानी में विसर्जित की जाने वाली मूर्तियों को बनाने में POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति AM खानविलकर की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया है कि राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सकारात्मक है। शुक्रवार को मुंबई में समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने सुझाव दिया कि इस संबंध में तत्काल प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जिससे उनका कौशल विकास होगा। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीधे धान बेचने के लिए नाम दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला बिचौलियों से बचने के लिए लिया गया है। पंजीकरण कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कराया जा सकता है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शेफाली के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है।
एंड रवि, लेट्स हैव अ लुक एट द वेदर ऑफ आवर सदर्न सिटीज नाउ।
जी,
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। The minimum temperature will be 26 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees Celsius and a maximum of 29 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
राइट,
तो शुरुआत शेफाली 1920 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर से कर लेते हैं।
ओके,
इतिहास से जो हमने ली है।
बिल्कुल।
अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में रेडियो पर पहली बार समाचार प्रसारित किए गए थे।
वाओ, दैट्स एन इम्पोर्टेंट वन।
जी बिल्कुल।
And dear listeners, on this day in the year 1956, the President of India gave his consent to the States Reorganization Bill. The States Reorganization Act 1956 reformed the boundaries of Indian states and territories, systematizing them on language base. Also, in the year 1957, Malaysia celebrated its Independence Day, which is also known as the Merdeka Day. On this day in 1957, the Federation of Malaya declared independence from foreign rule at the Merdeka Stadium in Kuala Lumpur.
1962 में आज के दिन कैरेबियाई देश टोबैगो एवं त्रिनिदाद ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए। 1964 में आज के दिन कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रांत बना। और 1968 में भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। 1983 में आज के दिन भारत के उपग्रह INSAT-1B को अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया। और 1991 में आज के दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और 1995 में आज के दिन पहली बार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीन में मानवाधिकार पर आपत्ति दर्ज की।
Yes, and on 31st August 1997, Lok Sabha created history with its largest ever sitting of about 22 hours for a special Golden Jubilee session debating issues of national importance.
1998 में आज के दिन उत्तर कोरिया ने जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा।
In the year 1998, the government decided to raise the retirement age of the three service chiefs of the armed forces from 60 to 62 years.
1999 में आज के दिन पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न जनमत संग्रह पर संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने संतोष जताया। और 2009 में आज के दिन भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित एशिया की छह हस्तियों को वर्ष 2009 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 31 अगस्त को मनीला में सम्मानित किया गया। और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो शिफाली, इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है गोपाल स्वरूप पाठक का, जो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे। आपका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1896 को बरेली उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपने इस संसार से विदा ली 31 अगस्त 1982 को। वे 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक राज्यसभा के सभापति रहे। अपनी शिक्षा के अंतर्गत गोपाल स्वरूप पाठक ने एमए और एलएलबी की डिग्रियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थीं।
Today is the death anniversary of John Ford, an American film director and producer. He is regarded as one of the most important and influential filmmakers during the golden age of Hollywood. In a career of more than 50 years, he directed over 130 films between 1917 and 1970 and received 6 Academy Awards, including a record 4 wins for Best Director for The Informer, The Grapes of Wrath, How Green Was My Valley, and The Quiet Man. Ford is renowned for his westerns such as Stagecoach, My Darling Clementine, Fort Apache, and The Searchers. And what you are listening to in the background is the main theme of the movie Stagecoach. So let's listen to it.
अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं विजय शंकर मल्ल के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के लखनौर नामक ग्राम में हुआ था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर, काव्य समीक्षक एवं अत्यंत सफल अध्यापक रहे थे। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र एवं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के प्रिय शिष्यों में विजय शंकर मल्ल भी थे। विजय शंकर मल्ल ने भारतेंदु काल के गद्य को हंसमुख गद्य की संज्ञा दी थी। इन्होंने पहली समीक्षात्मक पुस्तक हिंदी में प्रगतिवाद नाम से लिखी। 31 अगस्त 2003 को विजयशंकर मल्ल का निधन हुआ था।
And dear listeners, today is the death anniversary of Lionel Hampton, an American jazz vibraphonist, percussionist and band leader. He worked with jazz musicians from Teddy Wilson, Benny Goodman and Buddy Rich to Charlie Parker, Charles Mingus and Quincy Jones. In 1992, he was inducted into the Alabama Jazz Hall of Fame and he was awarded the National Medal of Arts in 1996. What we are listening to is a composition by him, Flying Home.
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रख्यात उर्दू कवि, उपन्यासकार और लघुकथा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1919 को और इन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा 31 अगस्त 2016 को। कश्मीरी लाल जाकिर हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक भी थे। भारत ही नहीं, पड़ोसी देशों में भी उनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुईं। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों, अम्बाला, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, पटियाला आदि की अखिल भारतीय उर्दू मशायरों की परंपरा के सूत्रधार कश्मीरी लाल जाकिर ही हुआ करते थे। कश्मीरी लाल जाकिर ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से ज्यादा किताबें लिखीं। उनकी रचनाएं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुईं। यही नहीं, कश्मीरी लाल जाकिर के उपन्यास कर्मावाली पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 100 से ज्यादा नाटक खेले। बाद में इसी पर दूरदर्शन ने भी धारावाहिक बनाया। यही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में कश्मीरी लाल जाकिर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जाकिर को पद्मश्री के अलावा राष्ट्रीय गालिब पुरस्कार, शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, एनएलएम यूनेस्को, साहिर लुधियानवी और फकरे हरियाणा जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उनकी दो बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं शेफाली, जो मुझे याद आ रही हैं।
जी बिल्कुल,
कि जिएंगे ताजा गुलाब बनकर ये तय हुआ था, जिएंगे ताजा गुलाब बनकर ये तय हुआ था, मरेंगे खुशबू का ख्वाब बनकर ये तय हुआ था।
क्या बात,
जिएंगे ताजा गुलाब बनकर ये तय हुआ था, मरेंगे खुशबू का ख्वाब बनकर ये तय हुआ था। पढ़ूंगा तुमको, लिखूंगा तुमको, ये फैसला था, रहोगे मेरी किताब बनकर तय हुआ।
And dear listeners, today we are observing the death anniversary of Charles Pierre Baudelaire, a French poet, essayist, translator and art critic. His poems are described as exhibiting mastery of rhyme and rhythm, containing an exoticism inherited from the Romantics and are based on observations of real life. His most famous work, a book of lyric poetry titled Les Fleurs du Mal, or The Flowers of Evil, expresses the changing nature of beauty in the rapidly industrializing Paris, caused by Haussmann's renovation of Paris during the mid-19th century. Baudelaire, and this is important, listeners, so pay attention, Baudelaire coined the term modernity to designate the fleeting experience of life in an urban metropolis and the responsibility of artistic expression to capture that experience.
और अब बात भारत के 13वें राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल में और निधन 31 अगस्त 2020 दिल्ली में। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। प्रणब मुखर्जी को कई प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल मंत्रालय संभालने जैसी विशिष्टता प्राप्त रही। उन्होंने रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग, राजस्व, नौवहन, यातायात, संचार, वाणिज्य और उद्योग, आर्थिक मामले जैसे लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी थीं।
And dear listeners, and especially the radio enthusiasts, today is the birth anniversary of Turga Janaki Rani, an Indian broadcaster, social activist and a writer who worked with All India Radio for 2 decades. She was popularly known as Radio Akkaya or Radio Sister. She joined All India Radio in 1974 as producer. She handled the planning, production and presentation of programs for women, children, senior citizens and working women in collaboration with Department of Education, Panchayati Raj, Osmania University and UNICEF. She has created many programs focusing on universal primary education. She had won Akashwani National Award 4 times for her documentaries on the hearing impaired, about the aged and for chorus songs by children. A Bharatnatyam dancer herself, she not only performed but also choreographed ballets for Doordarshan. She wrote 3 short story anthologies, 3 novels, 5 books for children and also a collection of radio plays and features. Her short stories are translated into English, Hindi, Bengali, Kannada, Uriya, Marathi and Tamil.
और शेफाली, अब जिक्र प्रसिद्ध कवियत्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का, जिनका जन्म 31 अगस्त 1919 पंजाब के उस हिस्से में हुआ जो अब सीमा पार वाले देश में आता है। अमृता प्रीतम को 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री माना जाता है। इनकी लोकप्रियता सीमा पार पड़ोसी देशों में भी बराबर है। इन्होंने पंजाबी जगत में 6 दशकों तक राज किया। अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थीं जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था। अमृता प्रीतम पहली महिला थीं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साथ ही साथ वे पहली पंजाबी महिला थीं जिन्हें 1969 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उनकी आवाज में उनकी ही एक बहुत खूबसूरत रचना है
जी।
सुन लेते हैं।
बिल्कुल।
अखरां दे अदब विच्चों ही मैं क्या सी, चुप दे इस रुख नालों मैं अखर नहीं तोड़े, ए तां जो रुख नालों चढ़े सी मैं उही अखर चुनदी रही, तुसानू जा किसे नू मैं कुछ नहीं आख्या, ए तां जो लव विच बोले सी मैं उही अखर सुनदी रही, बिजली दी लंबी लकीर सी छाती जो लंगी सी, ए तां कुछ उसे दे टोटे मैं उंगलां ते गिनदी रही, ते चन ने चरखे ते बह के बदलां दी कपा कत्ती, ए तां कुछ ओई तागे ने जो खड्डी ते उंदी रही।
Also, Ravi, Preetam is best remembered for her poignant poem, Aaj Akha Varishanu, Today I Invoke Varisha or Ode to Varisha, an elegy to the 18th century Punjabi poet and an expression of her anguish over massacres during the partition of British India. Also, listeners, she received the Gyanpeeth Award, one of India's highest literary awards, in 1982 for Kagaz Te Canvas. And now, listeners, today is the birth anniversary of Trivandrum R. Venkataraman, a classical musician and veena player from India in the Carnatic music genre. He was one member of a veena violin venue trio, whose other members were Lal Gudi, G. Jayaraman and N. Ramani. He was awarded with the Kerala Sangeet Natak Academy Award in 1982. What we are listening to is the Carnatic instrumental from them.
और कार्यक्रम में अंत में याद कर लेते हैं बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निदेशक, लेखक और अभिनेता रहे और चौखर वाली, रेनकोट और अबोहोमन जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे ऋतुपूर्णा घोष के बारे में, जिनका जन्म हुआ 31 अगस्त 1963 और आपने इस संसार से विदा ली 30 मई 2013 को।
लोधा बोलो पाले ले गे छे मंदो मधुरो हावा देखी।
और चलते चलते आज का विचार कि धैर्य वो गुण है जो हर तूफान के बाद भी स्थिर खड़ा रहने की ताकत देता है, इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शेफाली सिंह को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।